ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ब्रह्मार्पणम मंत्र न पढ़े बिना खाने लग जाए वो असुर होता है। हाँ, इसने ये किया, विष्णु के तरफ इशारा किया कि ये कोई छद्म बेदी है, प्रच्छन्न देवता है, है? इसने पी लिया तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया विष्णु ने, क्योंकि गले से नीचे उतर चुका था, मरा नहीं, तो दो हो गए, तो सिर राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। अब जब उधर से असुर लोग सब नहा धो के आए, अमृत पिलाओ, बोले घड़ा तो खाली हो गया। क्या हुआ? बोले पी गए सब देवता। हाँ, तो ये बात भगवान शिव के यहां पहुंच गई, शिव तक पहुंच गई ये बात। भगवान विष्णु ने इस तरह असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाई, मोहिनी रूप धारण किया। भगवान शिव को लगा कि ये मोहिनी रूप कैसा होता है, जरा देखना चाहिए, तो भगवान विष्णु को बुला लिया। तो आपने सुना है मोहिनी रूप धारण करके असुरों को ठककर हम देवताओं को अमृत पिलाया, बोले हां महाराज वही किया है, कृपा करके मुझे दिखाओ न मोहिनी रूप। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं महाराज, आप इस रूप को दर्शन न करो, ये आपके लायक नहीं है वो रूप। शिवजी ने हट किया, नहीं नहीं भाई दिखाओ, एक बार दिखा दो, देखने में क्या हर्जा है। अब शिव ने जब आग्रह की तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा भाई दिखा देंगे। प्रसंग बनाकर भगवान विष्णु ने वो रूप दिखा दिया शिव जी को, क्योंकि मोहिनी थी, मोहिनी रूप था, तो मोहित तो होना ही जरूरी था। यदि शिव मोहित न होते तो रूप की सार्थकता न होती, मोहिनी ये सार्थक न होता, तो मोहिनी इस रूप को सार्थक करने के लिए भी भगवान शिव को सम्मोहित तो होना ही पड़ा। ऐसे सम्मोहित होगा कि जब पकड़ने के लिए उठ खड़े हो गए, पुराण में सब प्रसंग है, बड़ा विभत्स अवस्था है भाई। दौड़े आगे आगे मोहिनी, भगवान विष्णु मोहिनी, पीछे पीछे भगवान शिव, दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, पकड़ लिया शिवजी ने, पकड़ लिया। हरी इच्छा थी तो एक बेटा पैदा हुआ। मैंने परसों भी संकेत किया था ना, उस बेटे का नाम है अय्यप्पा, वेद में उसका नाम है शास्ता पुरुष, दक्षिण में उसको अय्यप्पा, दक्षिण भारतीय नाम में अय्यप्पा बोलते हैं, वेद ने उसका नाम रखा शास्ता पुरुष। हम लोग बोलते हैं स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, पूजा करते समय बोलते हैं ना, ये उनमें से जो ग्राम देवताभ्यो नमः है वह शास्ता पुरुष है, वही है हरिहर पुत्र। तो उस समय में मोहिनी रूप फिर शिवजी को दिखाकर भगवान शिव की पत्नी बन गए, यही भार्यात्व। भगवान शिव की इच्छा से ही ना मोहिनी रूप दिखाकर पुत्र पैदा किया, यही तो भार्यात्व है। विष्णु ने बाणत्वम वृषभत्वम अर्थ वपुषा भार्या तुम आर्या पते, आर्या पते संबोधन है। आर्या माने पार्वती, उनके पति आर्या पते। आर्या आर्य आर्या पार्वती। घोड़ी तुम बराह रूप धारण किया, अभी भगवान विष्णु ने शिव की आज्ञा से पृथ्वी को लाने के लिए बराह का रूप धारण किया। या ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता लगाते समय में बराह रूप धारण करके नीचे चले गए थे, तो वही घोड़ित्वम। सखीता, भगवान शिव सखी बनकर, नहीं विष्णु सखी बनकर शिव के सान्निध्य में रहे, ये सब पुराण में अलग अलग प्रसंग हैं। मृदंग बहता तांडव नृत्य के समय में मृदंग बजाने वाले भगवान विष्णु थे। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे तो वाद्य था नहीं, तो मृदंग बजाया विष्णु ने, तब भगवान शिव नाचने लगे। च इत्यादि रूपम ददौ, ऐसे और भी रूप भगवान विष्णु ने शिव जी के प्रसन्नता के लिए धारण किया है। कितने रूपों का वर्णन करें? तोत्पादे नयनार्पणम च हरिस्ते साहस्रम कमलवलिमाधाय पदयोर यदे कोने तस्मिन् निज मुदाहरण नेत्र कमलम। मैंने स्तोत्र में ये प्रसंग आप लोगों ने बहुत सुना है। उनका नियम था, भगवान शिव का नियमित रूप में अर्चना करना, अर्चना में प्रतिदिन सहस्र कमल की अर्चना भगवान विष्णु करते थे। एक दिन भगवान शिव की इच्छा से एक कमल कम हो गए, तो भगवान विष्णु ने तुरंत अपने नाम का स्मरण किया कि मुझे कमल नयन कहते हैं, इसका मतलब मेरा नयन कमल है, इसलिए तो मुझे कमल नयन बोलते हैं। मेरे आंख गोबर के होते तो मुझे क्या बोलते हैं? गोबर नयन। मेरे आंख वास्तव में कमल है, इसलिए मुझे कमल नयन बोलते हैं। तो एक कमल की कमी है, और मेरे पास तो दो कमल हैं, दो नेत्र हैं, एक चढ़ा देता हूं, अर्जा क्या है? मेरी पूजा तो निर्विघ्न होगी ना, पूजा में खंडित नहीं होगी। तो निकाला और वही चढ़ाने लग गए, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए कि तुमको नेत्र निकालने की जरूरत नहीं, पर संकल्प किया कि मुझे प्राप्त हो गया, समझे नहीं? मैं नेत्र भगवान शिव को अर्पण करूं, ये संकल्प किया कि मुझे प्राप्त हो गया। मानस पूजा में यही तो है, पुष्पाणि संतु मम इंद्रियाणि अक्षतान हृदय दीप आदि भावना, शरीर अगरबत्ती, ये तो भावना है। त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवान् त्वद्देह भागो हरि पूज्यात् पूज्यतरः। आप कैसे हैं? ये सब कर्म करने के कारण भगवान विष्णु सारे संसार में पूज्य हुए। आज सारे संसार के लोग विष्णु की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि विष्णु ने आपकी पूजा की, इसीलिए भगवान विष्णु का महत्व बढ़ा, इसलिए सारे संसार के लोग विष्णु की पूजा करते हैं। तो आप क्या हो गए? पूज्यात् पूज्यतर। पूज्यों के द्वारा भी पूज्य। बोलो, पूज्यों का भी पूज्य हो गया कि नहीं? इसलिए तो रामेश्वर, राम का भी ईश्वर रामेश्वर। सारे दुनिया राम की पूजा करते हैं और राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो शिव क्या हो गए? पूज्यात पूज्य तर सए वही न चेत को वा तदन्योधिक। और आगे कहते हैं, यह श्लोक बड़ा मार्मिक, यह 83वां श्लोक बड़ा मार्मिक श्लोक है सामान्य, लेकिन बड़ा गंभीर है। जनन मृति युतानां सेवया देवतानां नववति सुकलेशः संशयो नास्ति तत्र अजनीमं अमृतरूपं साम्बमीशं भजन्ति यहि अपरम सौख्यं तेहि धन्या लवन्ति। इसका सामान्य अर्थ है, जनन मृति युतानाम देवतानाम सेवया जनन मृति युतानाम देवतानाम सेवया सुख लेसा न भवति। जन्मने वाले और मरने वालों के जनन मृति युतानाम, हमेशा जन्मने वाले और मरने वाले, जन्मने वाले मरने वाले, ऐसे स्वभाव वालों का सेवा करके लेश मात्र भी सुख नहीं हो सकता। जनन मृति युतानाम सेवया देवतानाम। बोले ठीक है, जन्मने वाले मरने वाले तो मनुष्य हैं, उनकी सेवा करके रंच मात्र भी सुख नहीं हो सकता, लेश मात्र भी सुख नहीं होता, लेकिन देवता तो जनन मृत्यु वाले नहीं है। बोले देवता ना वो भी जनन मृत्यु वाले हैं, वो भी सृष्टि के आदम में पैदा होते हैं और सृष्टि के अंत में मरते हैं। ये हमारे तरह सृष्टि के बीच में हजार बार पैदा और हजार बार मरते नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन पैदा तो होते और मरते भी। पंचदशी में पढ़ा ना, जागृत के पदार्थ और स्वप्न के पदार्थ में अंत क्या है, तो विद्यारण्य मुनि जी ने बता दिया। स्वप्न के क्षणिक हैं, जागृत के थोड़ा नित्य हैं, नित्य माने लंबा समय के हैं। देवता एक बार जब पैदा होते हैं तो और मरते हैं, उस बीच में हम लाखों करोड़ों बार पैदा होते हैं और करोड़ों बार मरते हैं, ये फर्क इतना ही है। लेकिन देवता अमर नहीं, कभी पैदा नहीं होने वाले अज नहीं है, कभी न मरने वाले अमर नहीं है। इसलिए इस प्रसंग में वो भी जनन मृत ही है। तो इस संसार में मनुष्यों की सेवा करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता, देवताओं की सेवा करके भी कोई सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसकी सेवा तुम करोगे वो खुद अनित्य है, तो तुम्हें नित्य सुख कैसे दे सकता है। जनन मृति युतानाम सेवया देवतानाम न भवति सुख लेसा, उनकी सेवा करने वालों को रंच मात्र भी सुख नहीं हो सकता। संशयो नास्ति तत्र। और तुम्हें यदि शंका हो तो अनेक प्रमाण हम देंगे, इसमें शंका नहीं करना। संशयो नास्ति तत्र न भवति सुखलेश, संशयो नास्ति तत्र। इस प्रसंग में जरा भी संशय शंका नहीं है, सुख नहीं हो सकता। फिर किसकी सेवा करें महाराज? अजनिम, अजनिम अमृत रूपम, जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, जो कभी मरता ही नहीं। कौन है महाराज ऐसा इस दुनिया में? अंबया सहितम सांबम, अंबा सहित सांब, ईसम सांब ईसम भजन्ते। जो भगवान शिव की अजन्मा अमृत अविनाशी, अजन्मा अविनाशी भगवान शिव के जो सेवा करता है, भजन्ते भज सेवायाम भजन्ते, या यह परम सौख्यम, वह इस श्लोक में परम सुख का अनुभव करता है। परम सौख्यम ते ही धन्या लभन्ते, और वही व्यक्ति इस संसार में धन्य है, और वही व्यक्ति का जीवन धन्य है, और वही व्यक्ति वास्तव में परम सुख आनंद को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वह परम सुख परम आनंद तो प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा ही सुंदर यह श्लोक है, इसका भाव हो। एक भगवान शिव हुए हैं भास्कर राय, उन्होंने शिव नामक कल्पलतिका नामक एक स्तोत्र की रचना की। वहां भगवान शिव ही परम भजनीय हैं, वो सर्वश्रेष्ठ भजनीय सेवनीय भगवान शिव ही है, उसके अलावा और कोई नहीं, इसलिए अन्य का आश्रय नहीं लेना। भगवान शिव परम भजनीय क्यों है, उसके लिए भास्कर राय ने 9 कारण बताया। इन 9 कारणों से प्रमाण सहित उन्होंने प्रस्तुत किया। पहला कारण दिया, क्योंकि भगवान शिव अनंत है, अनंत माने सीमा नहीं है जिनकी, जिसमें देश परिच्छिन्नता नहीं, काल परिच्छिन्नता नहीं, वस्तु परिच्छिन्नता नहीं, इस अनंतता के चलते वही सबसे श्रेष्ठ भजनीय हैं। इसमें प्रमाण कौन है? बोले विष्णु प्रमाण है। अनलय स्कंद वपुषा, अनलम परिच्छेत्तुम अनलम, पता लगाने के लिए विष्णु चले वराह रूप धारण करके नीचे, पता लगा नहीं पाए, ये विष्णु प्रमाण है कि भगवान शिव अनंत है। भास्कर राय ने यह प्रमाण दिया, एक हेतु तो ये दिया। दूसरा हेतु दिया, भगवान शिव परम उदार हैं। परम उदार होने के कारण ही भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं, उत्तम भजनीय हैं। इसमें उदारता प्रमाण कौन है? भास्कर राय ने कहा इसमें प्रमाण उपमन्यु है। उपमन्यु भगवान शिव का भक्त हुए हैं उपमन्यु। महाभारत का वो प्रसंग की तरह ही उपमन्यु का जीवन है। अश्वत्थामा ने मामा के घर गए और मामी ने उनको दूध पिला दिया अश्वत्थामा को। ये कहानी सुना है ना तुम लोगों ने, क्योंकि उनके घर में तो दूध था नहीं, द्रोणाचार्य जी के घर में तो गाय थी नहीं, गरीब थे बेचारे। अष्टावक्र के यहां गए तो दूध पीने को मिल गया उनको। घर में आकर कहने लगे मां, मामी ने जो चीज दिया है वो मुझे पीने को, बहुत बढ़िया था। क्या था भाई? बोले नाम तो मुझे पता नहीं। कैसा था? बोले गिलास में दिया था सफेद सफेद पानी जैसा था। तो समझ गई अश्वत्थामा की मां, कृपी ने समझ लिया ये जरूर गाय का दूध पिलाया होगा उसने। अब वो मांग रहे हैं मुझे गाय का दूध पिलाने पीने दो, और गाय है ही नहीं, कहां से लाके दें दूध? कहते अंदर गई और आटा घोल के, और आजकल का हॉर्लिक्स होता तो ठीक था तो गई और गर्म पानी में आटा घोली और लाके दिया। अब कहां गाय का दूध, कहां आटा घोला हुआ, फेंक दिया। ये तो वो चीज नहीं है। रोने लग गए। द्रोणाचार्य को कहा कि अरे बेटा ऐसा कर रहा है, ये गाय तो लाना चाहिए। बोले कहां से लाएगा? बोले तुम्हारा मित्र राजा बन गया है, बचपन का सखा द्रुपद राजा बन गया है, तो उसके पास तो बहुत से गाय है, एक गाय मांग के लाओ, जरूर देगा। तो पत्नी के कहने से बेचारे चले गए द्रोणाचार्य मांगने। कहां पहचानने से ही मना कर दिया, मेरा कौन मित्र, कौन सखा, कहां मैं राजा, घमंड देख लो। तब उन्होंने कहा कि अच्छा अब तेरी बुद्धि को ठिकाना लगाना पड़ेगा। वो प्रसंग अलग था, यहां उपमन्यु का भी वही सेम ऐसे ही प्रसंग है। बहुत जिद्द किया तो उनकी मां ने कहा बेटा तुमको यदि दूध पीनी हो तो भगवान शिव की भक्ति करो, उनकी कृपा होगी तो गाय मिलेगा, फिर दूध मिलेगा तुमको, और नहीं तो हमारे पास गाय ही नहीं है, शिव की कृपा नहीं हुई है, वही दे सकते हैं तुमको गाय का दूध, हम तो नहीं दे सकते बेटा। तो उपमन्यु ने भक्ति की शिव जी की, और भगवान शिव प्रसन्न होकर उपमन्यु से कहा कि बेटा क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे गाय का दूध चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि कैसा भोला है बेचारा, हमारे सामने ये गाय का दूध मांग। तो भगवान शिव ने सिर में से थोड़ा सा निचोड़ लिया, क्या था, अमृत था ना, सोम चंद्रमा, उसमें से थोड़ा निचोड़ लिया, गिलास में डालकर ले बेटा दूध पी ले। मांगा था गाय का दूध, पिला दिया अमृत, इससे बढ़कर उदार और कौन हो सकता है? इसलिए शिव ही वजनीय है, दूसरा हेतु नौ हेतु दिया है ऐसा है। तीसरा हेतु भगवान शिवा हमेशा सत्य के पक्षपाती हैं, असत्य के पक्षपाती नहीं है। इसलिए भी भगवान शिव भजनीय है। सत्य का पक्ष लेने वाले के प्रति प्रसन्न और असत्य का पक्ष लेने वाले के प्रति दंड। इति शिव सत्यनिष्ठा होने के कारण भगवान शिव ये भजनीय है। प्रमाण क्या है? ब्रह्मा और विष्णु ये प्रमाण है। वही ज्योतिर्लिंग के पता लगाने के प्रसंग में झूठ का आश्रय लिया ब्रह्मा, सिर काट दिया, और सत्य का आश्रय लिया विष्णु ने, तीनों लोक में पूज्य हो गए। चौथा हेतु है मृत्यु से सर्वथा रक्षा करने वाले हैं भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं। प्रमाण क्या है? मार्कंड ऋषि इसमें प्रमाण है। और थोड़ी सी सेवा से बहुत ज्यादा फल देने वाले हैं, इसलिए भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ पूज्य है, उत्तम है। प्रमाण क्या है? शिव पुराण में शिवरात्रि की कथा तुम लोगों ने सुनी है। एक ब्राह्मण का बालक था, वह बड़ा उठपटांग काम करता था, परिणाम ब्राह्मण धर्म से च्युत होकर चांडाल धर्म अपना आया था, चोरी करना, लूटना, यूं करना त्यूं करना, कोई सच्चरित्रता थी नहीं उसमें, तो जंगलों में रहता था। शिवरात्रि के दिन दिन भर व्रत बैठकर शाम के समय में गांवों का कोई भक्त भगवान शिव मंदिर में प्रथम प्रहार रात्रि को पूजा करने के लिए गया था, तो बहुत से पकवान नैवेद्य फल फूल है मिष्टान्न लेके गया। अब वो चांडाल बेचारा वही मंदिर के पास में बैठा था, कोई आएगा कुछ लूटेंगे, वो अंदर गया भक्त, बत्ती जला ली, पूजा किया, एक प्रहर की पूजा की, और सब मिष्टान्न आदि पकवान फल फूल शिव को अर्पण किया और वो चला गया। उसके बाद वो चांडाल आया, वो अंदर घुसते ही बत्ती बुझ गई। तो कहां क्या रखा है उसको क्या पता, अंधकार में इधर टटोलता है उधर टटोलता है। उसके दिमाग में आ गया अपनी जो पुरानी धोती हुए पहन रखा था उसको फाड़ा, और एक दूसरा पत्थर लेके, क्योंकि वो जंगल में तो आग उसी तरह जलाता था, वो एक पत्थर में दूसरा पत्थर रगड़ो तो चिंगारी आती है चकमक, उससे आग बत्ती जलती, आग जल निकलता है, अग्नि निकलती है। उसने अपने पुरानी धोती का एक छड़ा फाड़ा और एक पत्थर का टुकड़ा कैसे उसको मिल गया, और शिवलिंग में मारा, जोर से मारा तो चिंगारी निकली, तो कपड़ा में अग्नि तो दिया हो गया, ले जा रोशनी हो गई मंदिर के अंदर। तब फटाफट फल मिठाई सब खोज खास के खाया है। संयोग की बात, वो शिवरात्रि का दिन था, दिन भर कुछ खाया नहीं था, व्रत हो गया, और शाम के समय प्रथम प्रहार में उसने दिया जला दी। इतनी सेवा से भगवान प्रसन्न होकर दूसरे जन्म में कुबेर बना दिया। जाओ, थोड़ी सी सेवा से भी प्रसन्न होकर इतना दे देते हैं कि इतना दे देते हैं कि उसको फिर अब दुनिया में फिर कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भी भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय है। छठे कारण, बड़ा सा बड़ा संकट से निवृत्त करने वाले भगवान शिव हैं। समुद्र मंथन में जब कालकूट निकला, अकांड ब्रह्मांड अक्षय चकित देव सूर्य कृपा, बिना समय में प्रलय होने लगा, तो उस कालकूट को समन करने का किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो सब जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उन्होंने आराम से उसका पान करके संकट मोचन, बड़ा सा बड़ा संकट से निवृत्त कर दिया। इसमें प्रमाण है समुद्र मंथन का। नीलकंठ हो गए वो अपने आप। सातवां हेतु है, यदि उनकी उपेक्षा और तिरस्कार करके शास्त्र मर्यादा का उन्मार्ग करता है तो उसको दंड देकर सन्मार्ग में लगाते हैं, तो बिगड़ने वाले जिंदगी को भी सन्मार्ग में लगाकर सुधार देते हैं। इसमें दक्ष प्रजापति प्रमाण है, है? उनका अपमान किया, उन्हीं का अपमान किया, शिव का ही अपमान किया, वैदिक विधि का तिरस्कार किया, फिर भी उसको दंड देकर उसका उद्धार कर दिया और आगे परम शिव का भक्त भी बन गया दक्ष प्रजापति। हेतु है, आठवां हेतु दिया, परम हित का उपदेश करने के कारण भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भजनीय हैं, उपासनीय हैं। हेतु क्या है? भगवान राम इसमें प्रमाण है, शिव गीता का उपदेश किया भगवान शिव ने स्वयं राम को और सनत कुमारों को, तत्त्वमसी महावाक्य का ज्ञान मुद्रा से दर्शन उपदेश किया, यो भद्रया मुद्रया, इसलिए भी मोक्ष शास्त्र का उपदेश चिन्ह मुद्रा के द्वारा उपदेश करने के कारण सा पूर्वे सामपि गुरु हो, इसलिए शिव सबसे उत्तम भजनीय है। नौवां हेतु दिया, परमात्मा की उत्तमता तो वेद ने सर्वत्र प्रशंसा की है। ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर आदि आदि, तो इन सब कारण से भगवान शिव ही भजनीय हैं, और भगवान शिव का भजन करोगे तभी वह नित्य सुख अमृत की प्राप्ति होगी, अन्यथा जनन मरण जन मृतों की सेवा करके लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।